हरे राम 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 हरे हरे तो आज राधा रानी के आविर्भाव तिथि का उत्सव मना रहे हैं राधा अष्टमी के उपलक्ष में। तो हम आज समझने का प्रयास करेंगे राधा रानी क्या है, राधा रानी का तत्व क्या है। राधा कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और राधा रानी के विषय में दुनिया में कोई नहीं जानता था जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद राधा तत्व दुनिया में सब वैष्णव ने जाना। राधा तत्व बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गुह्य है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा के विषय में दुनिया को जानकारी मिली। वासुदेव घोष ने कहा है अगर गोरा न होता, अगर गोरा नहीं होते चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो हमारे को राधा की महिमा प्रेम की सीमा कौन बताता। तो चैतन्य महाप्रभु के आने से संसार में राधा रानी के विषय में जानकारी हुई। तो राधा रानी कौन है, आइए चैतन्य चरितमृत से थोड़ा सा उस तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा और कृष्ण एक ही हैं, दो शरीर धारण किए। राधा कृष्ण एक ही हैं, दो शरीर धारण किए हैं। अन्यो अन्य विलास रस आस्वादन करी, क्यों किए हैं दो शरीर, एक दूसरे को आनंद देने के लिए। तो श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है और जब उनको आनंद उल्लास करने की इच्छा होती है तो उनके अपने वाम भाग से लेफ्ट साइड से राधा रानी का प्रकट होता है गोलोक धाम। तो राधा रानी कैसे प्रकट हुई, भगवान कृष्ण के देह से, कृष्ण के स्वरूप से, उनके लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट हुई। और जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा, अपने से ही पैदा हुई थी उसकी ओर देखा, तो वो बड़े प्रेम में और सुंदर बन गई और भागते हुए फूल उठा के रास मंडल से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया तो उसका नाम हो गया, आराधना की और दौड़ी तो उसका नाम हो गया राधा। राधा का मतलब आराधना करने वाली। तो राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दो ही एक आत्मा है, दो नहीं है। तो कब ऐसे अलग हुए, तो यहां लिखा है राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार। राधिका क्या है, कृष्णेर प्रणय विकार। विकार कहते हैं जैसे दूध से दही बनता है ना, तो उसको कहते हैं दूध का विकार है दही। विकार का मतलब परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कृष्ण के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई, कब आया, प्रणय विकार। प्रणय किसको कहते हैं, प्रेम की जो हाईएस्ट, जो ऊपर की, बहुत ऊपर की परिकाष्ठा प्रेम की है, दी हाईएस्ट लिमिट ऑफ दी लव जो है उसको प्रणय कहते हैं। जैसे प्रेम है फिर स्नेह है फिर मान है, ऐसे प्रेम के अलग अलग स्तर हैं। लेकिन प्रणय, प्रणय का मतलब है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप आईने में जब अपने आप को देखते हैं तो आप जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आप में और शीशे में कोई अंतर तो नहीं है, और उससे किसी को कोई ऐसे संसार की दृष्टि से कोई भाई हमको शंका होती है ऐसा भी नहीं है, अपने आप को देखने में कोई आपत्ति तो है नहीं। तो ऐसे श्री कृष्ण का ही स्वरूप राधा रानी का प्रकट्य है। जब कृष्ण प्रेम की परिकाष्ठा में होते हैं तो कृष्ण का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और राधा के रूप में वो प्रकट होता है। क्या है राधा? स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति। अब भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और राधा उसकी स्वरूप शक्ति है। स्व स्व मतलब स्वयं, रूप मतलब अपने रूप का, स्वरूप का मतलब अपना ही रूप, उसकी शक्ति है। क्या नाम है शक्ति का? अहलादिनी नाम यार। और इस भगवान की शक्ति श्री कृष्ण की, उसका नाम है अहलादिनी। क्या काम करती है अहलादिनी शक्ति? भगवान ने इसको प्रकट क्यों किया है, अपने से क्यों इसको प्रकट किया है? तो कहते हैं अहलादिनी कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन। अब क्या करेगी राधा रानी? कृष्ण को आनंद आस्वादन कराएगी। कृष्ण के लिए जो कृष्ण की इच्छा है आनंद लेने की, उस सारे की व्यवस्था करेगी राधा रानी। तो राधा कृष्ण, राधा रानी कृष्ण को आनंद देगी, ये तो ठीक है, लेकिन हम बैठ के क्यों कथा उसकी सुने, हमारे को क्या लाभ है? तब ये बहुत सुंदर लिखा है, अहलादिनी द्वारे करे भक्तेर पोषण। भगवान श्री कृष्ण अपनी अहलादिनी शक्ति राधा रानी के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं। पोषण करने का मतलब है उनका देखभाल करना। जैसे बच्चे को माँ पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, साफ करती है, सुलाती है, खिलाती है, ऐसे राधा रानी कृष्ण के भक्तों की देखभाल करती है, उनका पोषण करती है। तो भक्त जो एक बार भगवान का भक्त हो गया कृष्ण का, उसकी देखभाल माया शक्ति नहीं करती है जो राधा रानी की छाया है। माया क्या है? राधा रानी की छाया है। तो राधा रानी भक्तों का पोषण करती है। भगवत गीता में आया है, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो साधु महात्मा होते हैं सततम कीर्तनयन्तो माम, कृष्ण कहते हैं जो सदा मेरा कीर्तन करते हैं वो मेरी देवी प्रकृति राधा रानी अहलादिनी के संरक्षण में अथवा देखभाल में या प्रोटेक्शन में या केयर में रहते हैं। तो राधा रानी हम भक्तों का लिए माता है, जैसे माता होती है बच्चे के लिए, ऐसे भक्तों के लिए राधा रानी माँ है, जगतेर माता है, आगे इसमें आएगा। तो अब यहां से आगे चलते हैं थोड़ा। यहां लिखा है अहलादिनी का काम क्या है? अहलादिनी सार प्रेम। अहलादिनी का काम क्या है? प्रेम। प्रेम सार भाव। और प्रेम का सार का मतलब कंक्लूजन क्या है? भाव। भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। भाव की ऊपर का स्टेज जो है, हाईएस्ट लिमिट भाव, उसको कहते हैं महाभाव। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। राधा ठाकुरानी कौन है? महाभाव स्वरूप है, महाभाव स्वरूप। कृष्ण को रसास्वाद देने के लिए राधा रानी के समान कोई नहीं है। 16,000 गोपियों के साथ रास कर रहे थे, एक राधा रानी नहीं रही तो कृष्ण वहां से चले गए। तो एक राधा रानी जो आनंद कृष्ण को देती है 16,000 मिलके नहीं दे सकती। तो ये है महाभाव स्वरूप राधा ठाकुरानी। सर्व गुण खानी, सारे गुणों की खान है। खान किसको बोलते हैं? माइन। माइन होती है ना सोने की माइन, जहां सोना ही सोना होता है। ऐसे सारे अच्छे गुण जो हैं, गुड क्वालिटीज है उसकी ये ट्रेजर हाउस है। कृष्ण कांता श्रोमणि, वैसे गोपी का गोपीश गोपी का कांता। कृष्ण कौन है? सारे गोपियों के कांत है, गोपियां उससे प्रेम करती हैं। लेकिन यहां क्या है? कांता श्रोमणि। श्रोमणि सिर कहते हैं सिर, और सिर के ऊपर होती है मणि। जो सर के ऊपर मणि ऐसे लगाते हैं ना ऊपर, उसको बोलते हैं श्रोमणि। इसका मतलब सारी जो कृष्ण के प्रेम करने वाली गोपियां में है उनके सर का मोर है, सर का मोर, सर के ऊपर ना मोर लगाते हैं तो सबसे ऊपर हो गया, तो श्रोमणि का मतलब सर का मोर है। तो ये राधा क्या है, ये कृष्ण कांता श्रोमणि, ये राधा के तत्व की बात है। अब आगे कृष्ण प्रेम भाविता यहां चित्त इंद्रिय काय, राधा रानी का शरीर, राधा रानी का बोलना देखना जो कुछ है, इंद्रियां मन जो कुछ है वो सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए है। कृष्ण निज शक्ति राधा किरणा साय, ये भगवान श्री कृष्ण की अपनी शक्ति है, और भगवान की किरणा किसको कहते हैं, खेलने को, किरणा कहते हैं खेलना, हाँ, प्लेइंग, तो जैसे रास किरणा, तो उसमें कृष्ण को साय देने के लिए है। अब इसके बाद एक बात और, राधा रानी का विस्तार ये बताया है कि राधा रानी जैसे कृष्ण से सारे अवतार निकलते हैं, हाँ, अवतारी कृष्ण जैसे सारे अवतार करे, जितने अवतार कृष्ण से सारे निकलते हैं, ऐसे राधा रानी से क्या निकलता है, वैकुंठ की सारी लक्ष्मियां, द्वारका की सारी भगवान की रानियां और ब्रज की सारी गोपियां, ये राधा रानी का विस्तार है, दे आर एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी। जैसे जितने भी अवतार आते हैं कृष्ण का विस्तार है, दे आर एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, तो यहां अंशिनी राधा है तो तीन गुणे रा विस्तार, क्या है तीन गुण, तीन में राधा रानी का क्या विस्तार है, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महेशी गण आर, एक लक्ष्मियां जो वैकुंठ में है और एक द्वारकापुर में, जो द्वारका में भगवान की रानियां हैं, और तीसरा व्रज अंगना रूप, और तीसरी व्रज की गोपियां, ये सब क्या है, ये राधिका है, ते कांता गणेरा विस्तार, ये राधिका का विस्तार है, सब ये सब राधिका से निकलती है, इनका सोर्स राधिका है। अब एक श्लोक है, बहु कांता बिना नाही रसेर उल्लास, जब तक बहुत प्रेमिकाएं नहीं है तब तक रास लीला का आनंद नहीं आता है। लीला रस सहाय लागी बहु प्रकाश, बहुत प्रकाश, इसलिए राधा रानी ने अपने से अनेक बना दिए गोपियों को, ताकि कृष्ण के साथ रास करने का आनंद आए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ले गए चुरा के, तो कृष्ण अपने आप से सब ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, लकुटी बन गए, ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण से जैसे राधा रानी निकलती है, ऐसे राधा रानी से ये सब निकलती है, तो ये सब राधा रानी का ही प्रकाश है, उसका ही विस्तार है। गोविंद आनंदनी राधा, राधा क्या है, गोविंद को आनंद देने वाली है। गोविंद आनंदनी राधे गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करती है। गोविंद सर्वस्व, गोविंद के लिए सब कुछ ये है। सर्व कांता श्रोमणी, और फिर राधिका को वेदों में भी वर्णन है, कृष्णमयी राधे, कृष्ण यहां भीतरे बाहर है, उसके अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण है। यहां यहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्पुरे, वो जहां देखती है उसको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अब यहां दो कथाएं बताते हैं आपको, राधा रानी का प्रकट्य भगवान जब लीला के लिए इस धराधाम के ऊपर इस धरती के ऊपर आते हैं तो अपने निज भक्तों को जो भी भगवान का ही विस्तार होते हैं उनको माता पिता बनाते हैं। सो कृष्ण जब आते हैं तो उनके नित्य माता पिता कौन है? यशोदा मां और नंद बाबा। नंद नंदन कृष्ण, कृष्ण के माता पिता नित्य गोलोक में नंद और यशोदा हैं। ऐसे राधा रानी के नित्य माता पिता हैं वृषभानु और कीर्तिदा। महाराज वृषभानु और कीर्तिदा माता है और वृषभानु राधा का नित्य पिता है। तो राधा रानी का प्रकट्य कैसे हुआ? वृषभानु सुबह नहाने के लिए यमुना के किनारे गए रावल से, तो यमुना नदी के अंदर बहुत चमकता हुआ, हजार चंद्रमा चमकते हैं ऐसे, एक कमल का फूल देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ और देखते देखते फूल उनके सामने आया और फूल के ऊपर बहुत सुंदर एक छोटी सी बालिका मिली। बड़े प्रसन्न हुए, बच्ची यमुना में बहती हुई आई और फूल के ऊपर मिली, उसको उठा के घर लाए, कीर्तिदा को दी। बहुत सुंदरी को देखकर कीर्तिदा बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन थोड़ा सा शंका हुआ कि बच्ची आंखें नहीं खोल रही है, आंखें बिल्कुल बंद थी। तो चिंता होने लगी, लड़की तो बहुत सुंदर है, बच्ची को बड़ी सुंदर है, भगवान ने इतनी कृपा करके यमुना से प्रकट करके दिया है, लेकिन आंखें तो खोल नहीं रही है। तब नारद जी, उनने देखा कृष्ण का तो अवतार हो गया है, तो कृष्ण की प्रिय सी राधिका जरूर कहीं ना कहीं अवतार हुआ होगा, तो ढूंढते ढूंढते वो वृषभानु के घर में आए। महाराज वृषभानु ने बड़ा प्रणाम किया नारद जी को, कहा नारद जी ने पूछा आपका संतान? बोला श्रीधामा मेरा बेटा है। बोला और? बोला एक उसकी छोटी बहन है, लेकिन महाराज आप आए हैं तो हम आपसे थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, वो आंखों से देखती नहीं है। तो नारद जी ने कहा मैंने को दर्शन कराओ कहां है। नारद ने देखा हो, नारद जी पहचान गए कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रिय सी राधिका है, उनकी अलादिनी शक्ति है। तो वृषभानु महाराज को कहा कि आप ऐसे करो, सब ब्रजवासियों को भोजन के लिए बुलाओ, नंद बाबा यशोदा आदि सारे परिवारों को बुलाना, जाओ उसकी व्यवस्था करो। और राधिका को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप हमारी आराध्य देव हैं, आप यहां प्रकट हुई हैं, हम आपको ढूंढते हुए आए हैं, हमें दर्शन दीजिए। तो राधा रानी ने कृपा करके अपने किशोरी अवस्था में नारद जी को दर्शन दिया। अब जब महाराज वृषभानु ने सबको भोजन का निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया, तो सब लोग आए, तो नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया आई, रोहिणी माता आई, बलदेव और कृष्ण को साथ लाए। अब सब बातें कर रहे, भोजन में लगे हुए हैं, श्री कृष्ण वहां से पांव हाथों के बल थोड़े से ऐसे खिसक के जिस झूले के ऊपर राधा रानी सोई हुई थी उसके निकट पहुंचे। जैसे उसके निकट पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से एक बहुत दिव्य सुगंध आती है, एक फ्रेग्रेंस निकलती है, वो कस्तूरी की और उसके अंदर केसर, कस्तूरी, उग्रु, ये सब। वो जैसे सुगंध राधिका के नासिका में गई और फिर श्री कृष्ण ने उस पालना को पकड़ के ऊपर देखा, उस वक्त राधिका ने आंखें खोली और पहली बार कृष्ण को देखा। तो यहां लिखा है वो जहां देखती है केवल कृष्ण को देखती है, तो उन्होंने संसार में आके किसी को देखना नहीं चाहा सवाय कृष्ण के। तो जब कृष्ण को देखा तभी आंखें खुली। अब आंखें खुली, इतनी सुंदर कमल के पत्तों जैसी, पंखड़ियों जैसी आंखें, अब तो देख के कीर्तिदा कहती है अरे कैसे चमत्कार हुआ, आपका बेटा हमारे घर में आया, आप लोग आए और ये मेरी बेटी की आंख खुल गई। बड़ा आनंद हो गया कि राधा रानी अब वापस सबको देख सकती है, अब कृष्ण को ही पहले देखा। तो ये राधा रानी केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहती है, उसका उसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं। भीतर बाहर, उसके भीतर भी कृष्ण है, उसके बाहर भी कृष्ण है। एक भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीला सिद्ध आश्रम में हुई है, गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। सिद्ध आश्रम वहां है जहां एक स्थान है बिंदु सरोवर है, और बिंदु सरोवर की महिमा ये सत्यचंद्र आनंद एक गोपी है। शत का मतलब हजारों, चंद्र का मतलब चांद, आनंद का मतलब मुख, जिसका मुख हजार चांद की तरह प्रकाशमान है। वो पढ़ती हुई कहती है, बिंदु सरोवर में जो एक बार नहाएगा उसको कभी भी कृष्ण से जुदाई नहीं होगी, वो सदा कृष्ण के साथ रहेगा। तो राधा रानी ने कहा दोबारा पढ़ो, तो क्या कहा? बोला बिंदु सरोवर में एक बार नहाएगा सदा कृष्ण के संग रहेगा। बोला चलो बिंदु सरोवर। राधा रानी और सब गोपियां बिंदु सरोवर के लिए रवाना हुए। बहुत बड़ा विस्तार से रथ बना, ब्रिज से सब निकले, निकल के बिंदु सरोवर गए। बिंदु सरोवर द्वारका क्षेत्र में है, द्वारका क्षेत्र 100 योजन में है, और एक योजन में 8 कोस होते हैं, 16 मील होते हैं, 16 माइल एक योजन में होते हैं, और 1600 माइल का एरिया द्वारका कहलाती है। ये द्वारका 1600 माइल का, 100 योजन का द्वारका वैकुंठ से उतर के नीचे आया। ये आनर्त महाराज को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने ये द्वारका की भूमि वैकुंठ से लाके दी थी, इसलिए इसका नाम था पहले आनर्त देश, कि महाराज आनर्त को मिली थी, जो सूर्य वंश के एक महाराज थे। तो उसके बाद इसका नाम था कुश स्थली। तो अभी ये द्वारका क्षेत्र 100 योजन में, उसके अंतर्गत ये बिंदु सरोवर आता है। बिंदु सरोवर का ये भी परिचय है कि भगवान श्री विष्णु के आंखों से ये सरोवर बना है, और ये भगवान की आंखों से आंसू तब गिरे थे जब कर्दम मुनि की तपस्या को देखा था भगवान ने जाकर। तो ये वो स्थान वो है जहां कर्दम मुनि ने तपस्या की थी, और मां देवहूति और कर्दम का विवाह वहां हुआ था, और कपिल देव का प्रकट्य भी उसी स्थान के ऊपर है। ये अभी गुजरात में है, देखा जा सकता है, हम गए हैं कई बार दर्शन करने, आप कभी जाएं तो इसको देख सकते हैं। तो राधा रानी जब वहां पहुंची तो वो बिंदु सरोवर में नहाने के लिए जैसे प्रवेश किया तो सारी गोपियां चारों ओर से उनके लिए रक्षा करने के लिए डंडा लेके खड़ा हो गई, कोई इस तरफ नहीं आए। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण अपनी 16108 रानियों के साथ बिंदु सरोवर आए, और ये सब यदुवंशी साथ में आए। देखा क्या रे, यहां चारों ओर से ये डंडा उठा के कौन खड़े हैं, कौन यहां नहा रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है। कृष्ण से पूछा ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये वृषभानु नंदनी श्री राधिका जल विहार कर रही है, और ये सब उसकी सुरक्षा में है, और सब भयभीत, कोई आगे किसी को जाने नहीं दे। यदुवंशी समझे हम बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन गोपियां किसी को अंदर प्रवेश नहीं होने दे। गोपियां तो भगवान शंकर जी आए थे, उसको भी नहीं जाने दिया अंदर। बोला रुक जाओ, अंदर कोई नहीं जा सकता है, रासलीला में भगवान है, इस वक्त हम नहीं जा सकते। शंकर ने कहा इतने दूर से हम कैलाश से आए हैं और उनका दर्शन करने के लिए आए हैं, हम उन्हीं की तपस्या कर रहे हैं। बोला फिर आपको अंदर जाने के लिए ये सरोवर है, मानसरोवर, इसमें नहाना पड़ेगा। जैसे नहा के शंकर जी बाहर निकले तो गोपी बन गए शंकर जी, तो शंकर जी गोपी के रूप में ही अंदर प्रवेश किया। रासलीला में शंकर जी गोपी के वेश में ही केवल जा सके, पुरुष के वेश में नहीं जा सके। तो यहां ये तो कोई यदुवंशी अंदर नहीं जा सकता है। रानियां कहने लगी ऐसी क्या है राधिका में, कितने लोग उसकी सुरक्षा है, हम कोई कम है क्या? सत्यभामा ऐसे कहने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने, अभी राधा रानी नहा ही रही थी तब तक संदेश श्री कृष्ण का आया कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलना चाहते हैं। ये बिंदु सरोवर का वचन सत्य हुआ कि नहाते ही भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। तो अब राधा रानी और कृष्ण का मिलन हुआ। राधा रानी ने बहुत सुंदर सिंहासन जो गोलोक धाम में होता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण को बिठा के उसका आराधना की। भगवान श्री कृष्ण की सारी रानियां राधा रानी के साथ गले मिली। सबको शांत करने के लिए राधा रानी कहने लगी चंद्र एक होता है, चांद एक होता है, लेकिन हजार चकोर उससे प्रेम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण एक है हम सब उससे लाखों हजारों प्रेम करने वाले हैं, इसलिए हम सबको साथ प्रेम से रहना चाहिए। ऐसे सब प्रेम से मिले और फिर श्राद्ध के समय राधा रानी की सब देखभाल करके, सब गोपियों की देखभाल करके रुक्मणी जब वापस पहुंची भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण को दबाने के लिए रुक्मणी बैठी तो भगवान के पांव के तलुए में जले हुए बबल्स थे, जैसे आग से जलता है ना कोई, तो ऐसे जैसे बबल हो जाते हैं ऐसे पड़े थे। तो और रुक्मणी जी कहते हैं, आप कहीं बाहर गए नहीं, आपका चरण ऐसे कैसे जल गया? नहीं, ये एक स्टेप पीछे है। रुक्मणी जाके देखती है तो श्री कृष्ण सोए नहीं है, चल रहे हैं। आप अभी तक जागे हैं, जाग रहे हैं, सोए क्यों नहीं? बोला राधिका अभी तक नहीं सोई है, वो नहीं सोई है तो मैं नहीं सो सकता। बोला क्यों नहीं सोई है? बोला रात को सोने से पहले वो दूध का गर्म गिलास पीती है गाय का, आपने उनको सेवा तो की है लेकिन दूध का गिलास नहीं दिया। तो रुक्मणी एकदम जल्दी गई, बहुत सुंदर दूध को गर्म किया, सोने के कटोरे में लेके स्वयं जाके राधिका के हाथ में दिया। दूध देके जब वापस आई तो जब चरण दबाया तो चरण को जला हुआ देखा। तब पूछती, आप कहीं गए नहीं, आपका पांव कैसे जला? बोला आपने दूध राधिका को दिया था, उसको देखा था वो कितना गर्म है। मां बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उंगली डाल के अंदर देखती है कि कितना गर्म है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपने उसको देखा था, आपने बहुत ज्यादा अधिक गर्म दूध राधिका को दिया, उन्होंने पिया और उन्हीं के हृदय में मेरे चरण है और ये मेरे चरण उसके कारण जल गए। इसको बोलते हैं हॉट मिल्क लीला, गर्म दूध की लीला। तो यहां राधा रानी के अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। तो राधा रानी के हृदय में कृष्ण के चरण है और वो गर्म दूध के कारण कृष्ण अपने उसके चरण के ऊपर फफूंदे हो गए, वो बर्न हो गया। तो ये यहां परिभाषा है कि राधा रानी के अंदर भी कृष्ण और बाहर भी कृष्ण। एक बात समझनी चाहिए, राधा कोई स्त्री नहीं है और कृष्ण कोई पुरुष है, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान की दिव्य शक्ति है, संसार की स्त्री पुरुष की तरह उनका संबंध नहीं है। उनको समझने के लिए हमको इस स्तर से बहुत ऊपर जाना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी राधा और कृष्ण की लीला, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत सरलता से कहा कि आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाना है तो राधिका के चरणों में जाके बैठ जाओ। जैसे भगवान का हार्ड साइड कृष्ण है और सॉफ्ट साइड राधा है, एक ही भगवान के दो साइड हैं। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे थे, आपके पास सुंदर फूल है तो आप कृष्ण को सीधा मत दो, वो नहीं लेंगे। आप राधिका के हाथ में दो, मां बोलो माता ये फूल आप अपने कृष्ण को दीजिए, और जैसे ही राधिका उस फूल को कृष्ण को देगी और कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे आपको जो भी सेवा करनी हो राधिका के माध्यम से करो, इसलिए राधा की कृपा से ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती। इसलिए जितने भी गुरुजन हैं वो राधा रानी की कृपा का स्वरूप होते हैं, राधा की कृपा का स्वरूप होते हैं सारे गुरुजन। और बलराम जी की शक्ति का संचार होता है गुरु तत्व में, या नित्यानंद की शक्ति का संचार होता है। इसलिए राधा रानी को प्रसन्न करना है तो गुरुजनों को प्रसन्न करना जरूरी है। भगवान के वैष्णव की सेवा करने से राधा रानी की प्रसन्नता है और राधा रानी की और बलराम जी की प्रसन्नता से कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो ये राधा तत्व बहुत गहन और गंभीर है, ये स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, काम की वासना भी इसमें नहीं है, ये शुद्ध प्रेम है। और अगर इसको ठीक तरह सही साधु के मुख से सुना जाए तो संसार का काम की बीमारी हमारे हृदय से भी निकल जाएगी। ये भागवत में लिखा है कि ये भगवान के प्रेम की कथा सुनने से हमारे हृदय में जो कई जन्मों का काम का रोग है ये खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण एक कृष्ण ही पुरुष है। हम सब जितने हैं ये सब शक्ति है भगवान की, बाहरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति और हम तटस्थ शक्ति हैं, हम भगवान की शक्ति हैं। इसलिए केवल भगवान भोगता है, इसलिए भगवान भोगता है। भगवान किसको भोगता है? भगवान तो केवल राधा रानी के प्रेम को ही भोगता है। इसलिए हमको अगर कृष्ण के चरण में जाना है तो हमें राधा रानी के चरणों में जाना पड़ेगा, सीधा कृष्ण के चरणों में नहीं जा सकते। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे राधा रानी को संबोधन करते हैं, हे राधा रानी आप कृष्ण की सेवा में हमको लगाइए। तो ये मंत्र भी हमारा राधा रानी को प्रार्थना है। और प्रभुपाद जी के पिता हर साधु महात्मा वैष्णव को कहते थे कि आप राधा रानी को प्रार्थना करो, मेरे बेटे के ऊपर राधा रानी की कृपा हो। तो राधा रानी की कृपा की प्राप्ति के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, वैष्णव का संग करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, तब हमारे ऊपर कृपा राधा और कृष्ण की होगी। और भी बहुत सी सुंदर राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं, लेकिन समय तो मेरे ख्याल में अभी का हो गया होगा। हरे कृष्ण 8:15। तो कमल के फूल के ऊपर राधा रानी कहां से आई, कैसे वहां प्रकट हुई? रूप गोस्वामी पाद ने ललित माधव में लिखा है, ड्रामा एक उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है कि पर्वतों का राजा हिमालय, उसकी बेटी पार्वती गोरी और पार्वती का पति शंकर, तो एक और पर्वत विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत के मन में ये कॉम्पिटिशन का भाव आया कि इनकी गोरी बेटी है तो मेरे को ऐसी बेटी होनी चाहिए, इनका अगर बेटी का पति शंकर है तो मुझे उससे बड़ा कोई महात्मा, वो भगवान उसका पति होना चाहिए। तो उसके बहुत बड़ी तपस्या की विंध्या ने, तो विंध्या के घर में दो बालिकाएं पैदा हुई, दो बच्चियों ने जन्म लिया, वो भी योग माया ने उसी दो बच्चियों को वहां प्रकट किया। और जैसे उन दो बच्चियों का जन्म हुआ, तो कृष्ण का जन्म हो चुका था, 8 दिन हो गए थे, 10 दिन हो गए थे, पूतना सब जगह से बच्चों को मारने के लिए भाग रही थी, तो यहां विंध्या के दोनों बच्चियों को पूदिया पूतना उठा के भागी। जैसे पूतना दोनों बच्चियों को लेके जा रही थी तो विंध्या ने अपने पंडित को कहा कि तुम राक्षस को पकड़ने वाला, उसको मारने वाला मंत्र पढ़ो। तो उसने जैसे ही मंत्र पढ़ा राक्षसी को पकड़ने वाला, तो पूतना भयभीत होकर दोनों बच्चियों को गिरा दिया। तो एक बच्ची यमुना में ऐसे कमल के ऊपर गिरी और वो राधा के रूप में वृषभानु को मिली, और दूसरी बच्ची चंद्रावली थी, जो चंद्रभानु वृषभानु का भाई है, उसके घर में चंद्रावली के रूप में प्रकट हुई। तो ये दोनों बालिकाओं का जन्म ऐसे रूप गोस्वामी ने लिखा है, और भी सखियों का जन्म इस तरीके से लिखा है, ये उनके ड्रामे में वर्णन है। अब श्री कृष्ण और राधा का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था, जब 3-1 साल से उम्र होगी कृष्ण की, 3.5 साल की। एक बार नंद बाबा कृष्ण को लेकर कंधे पे उठा के गायों को चराने के लिए दूर निकल गए, और भांडीर वट एक जगह है, वट कहते हैं वृक्ष को, बनियान ट्री को उसको, और भांडीर स्थान के ऊपर वट है, वो वृक्ष है। वहां जब पहुंच गए तो आंधी तूफान आया भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, और इतना तूफान लगा, साइक्लोन जैसा हो गया, अंधकार हो गया, तो कृष्ण भयभीत होके नंद बाबा को पकड़ने लगा। और उस वक्त नंद बाबा का अब क्या करना चाहिए, अचानक सामने से प्रकाश की तरह कोई हजार सूर्य आते हैं ऐसे दिखाई दिया। नंद बाबा उधर देखने लगा तो वृषभानु नंदनी राधिका आ गई। राधिका को देख के वृषभानु ने उसको, नंद बाबा ने उसको प्रणाम किया, क्योंकि गर्ग ऋषि ने उनको बताया था कि आपका बच्चा साक्षात परिपूर्ण भगवान है, और वृषभानु के घर में इनकी नित्य प्रेसी राधिका का प्रकट्य हुआ है। ये जानकारी नंद बाबा को गर्ग मुनि ने दी थी, और यही जानकारी गर्ग मुनि ने वृषभानु को भी दी थी, तो उनको भी मालूम था। तो जैसे ही राधिका को देखा, नंद बाबा ने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि बहुत मेरा धन्य हूं कि आपका दर्शन मुझे हुआ। राधा रानी ने कहा हमारा दर्शन बहुत दुर्लभ है, लेकिन आपकी कृष्ण प्रेम और भक्ति को देखकर मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तब नंद बाबा ने वरदान मांगा कि अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मैं आप राधा और कृष्ण के चरणों को कभी नहीं भूलूं, ये मेरे ऊपर कृपा करो, और कृष्ण के भक्तों के संग में सदा रहूं, ये मेरे ऊपर कृपा करो। जहां कहीं भी राधा कृष्ण आपके भक्त मिले, उनका संग मुझे मिले, ये दो मेरे को आशीर्वाद दो। ये देने के बाद, नंद बाबा ने ये कहने के बाद छोटा कृष्ण था राधा रानी की गोद में दिया कि ये आपका प्रिय है, आप इसको लीजिए। ये भयभीत हो रहा है, वैसे किसी से डरता नहीं है, काल भी इससे डरता है, लेकिन लीला के कारण। और जैसे वो दे के चले गए, नंद बाबा गायों की तरफ गए, राधिका इसको जैसे ही लेके आगे भांडीर वट की तरफ गई वन में, तो गोलोक धाम से जो पृथ्वी के ऊपर उतरा थी, पृथ्वी उतरी थी, वो पृथ्वी प्रकट होके गोलोक धाम का वातावरण बन गया। सुंदर एक वेडी बन गई, बसंत ऋतु बन गई, चारों ओर पुष्प खिल गए, और इतने बीच में बहुत सुंदर सिंहासन आ गया, और राधा कृष्ण उसके ऊपर बैठे, हंस के ऊपर ब्रह्मा जी ऊपर से उतरे, और ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कराया। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र पढ़ के और सात अग्नि के फेरे यज्ञ किया, राधा कृष्ण का विवाह किया, और फिर ब्रह्मा जी प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर चले गए। और फिर राधा और कृष्ण, अब दोनों विवाह जब हुआ तब कितने थे, 16 साल के किशोर अवस्था के हो गए, और फिर रास क्रीड़ा करके वन विहार कर रहे थे, और अब कृष्ण राधा का श्रृंगार कर रहा था, आंखों में काजल की पतली लकीर डाल दी, यहाँ सब निशान लगा रहे जैसे बच्चों के लगाते हैं। अब कृष्ण जब राधा कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो कृष्ण वापस बच्चा बन गया, जितना पहले था इतना हो गया। जैसे बच्चा बन गया, राधा रानी तो चटपटाई कि ये क्या हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि अभी नहीं, समय आने के ऊपर राधिका श्री कृष्ण से आपका नित्य मिलन होगा। तब राधिका समझ गई, कृष्ण को उस बाहर उठाया वापस जैसे पहले लिया था, और लाके यशोदा मैया को कहा, ये आपका बालक नंद बाबा ने मेरे को दिया था, जंगल में डर गया था, आप ले लीजिए। ऐसे राधिका देके अपने घर चली गई। इसके बाद गर्ग संहिता में लिखा है, कुछ समय के बाद राधा रानी को ललिता और विशाखा ने कहा, हे राधे, नंद नंदन कृष्ण रोज वृषभानु नगर में आता है, बरसाने में आता है, आप उसका दर्शन तो करो। बोला, पहले उसका मेरे को चित्र बना के दो, फोटो बना के दो। दोनों ने बहुत सुंदर फोटो बना के दे दिया। फोटो को देखा राधा ने, राधा देख के फोटो को आनंद में मगन हो गई। ऐसे जैसे सोई तो वो देख रही है कि भांडेर वट पे कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं, उसको ऐसे दिखाई देने लगा। और जैसे खिड़की से बाहर देखा तो कृष्ण उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे। ये पहला राधा कृष्ण के दर्शन हुआ। अब इसके बाद राधा रानी को दर्शन नहीं हुआ तो सखियों को बोलती, अब कृष्ण से मिलूंगी कैसे, मैं क्या रास्ता है। तब उन्होंने कहा, आप तुलसी की पूजा करो, तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। हम रोज तुलसी की आरती में रोज क्या गाते हैं, राधा कृष्ण युगल सेवा हमको मिलनी चाहिए, कुंज में वास मिलना चाहिए। तो राधा, तो इसलिए राधा रानी ने एक साल तक तुलसी की पूजा की, सुंदर मंडप बनाया, तुलसी का व्रत किया, उस व्रत का उद्यापन करके गर्ग ऋषि को बुला के ब्राह्मणों को खिला के बहुत दान पुण्य किया, तुलसी महारानी सामने होके दर्शन दिया। तुलसी महारानी ने दर्शन दिया राधिका ने, राधिका का, आप तो भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रिय हो, आपको तुलसी पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपने लोगों को सिखाने के लिए बताया है कि तुलसी पूजा से कृष्ण की प्राप्ति होती है, अब आप क्या चाहती हैं। बोला, मैं कृष्ण के प्रेम और कृष्ण के साथ मिलन हो, ये चाहती हूँ। ऐसे तथास्तु कह के वृंदा देवी चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि राधा ने तुलसी की पूजा भी की है और मुझसे प्रेम भी करना चाहती है, और ललिता ने मेरे को आके ये बात बताई भी है, अब क्या करना चाहिए, थोड़ी राधिका की परीक्षा लेनी चाहिए। अब ये परीक्षा लेने के लिए कृष्ण ने एक गोपी का रूप धारण किया। कृष्ण बने गोपी, पांव में पायल बांध दी, करधुनी बांध दी, आंखों में काजल, और यहां गजरा बना दिया, फूलों में बाल डाल के, और चनिया चोली पहनी, और गोपी बनी, और कृष्ण नंदगांव से निकले गोपी के रूप में, और बरसाना पहुंचे। और बरसाना में वृषभानु का बहुत सुंदर महल देखा, चार दरवाजे देखे, बाहर हाथी देखे, घोड़े देखे, गाय देखी, बैल देखे, अंदर प्रवेश किया, गोपी के रूप में एक उपवन में जहाँ बहुत सी गोपियां खड़ी थी और राधा रानी का चारों ओर से गान गा रही थी, उनके महिमा गा रही थी, कीर्तन कर रही थी, सुंदर फूल बिछे हुए थे। और जैसे ही गोपी के रूप में कृष्ण अंदर प्रवेश हुए तो बाकी सब जैसे चांद उगता है, सब बाकी तारे की तरह उनकी रोशनी कम हो जाती है, बाकी सारी गोपियां वहां थी वो तो वो कृष्ण ही केवल प्रकाश माने। राधिका ने दूर से देखा, टहल रही थी, देखते ही राधिका ने एकदम आके उनको आइए आइए उनकी अगवानी की, उनको एस्कॉर्ट करके ले गई, उनको बिठा के जलपान कराया। फिर राधिका कहे, आपका नाम क्या है, आप कहां से आई है, आप क्यों पधारी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो श्री कृष्ण कहता है, मेरा नाम गोप देवी है, नंदगांव से आगे कोने की तरफ हमारा गांव है, और ललिता ने मुझे आपकी सुंदरता का इतना वर्णन किया था, मैं आपका दर्शन करने के लिए आई हूं। तब राधिका कहती है, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। राधिका इस नई गोप जो गोप देवी बन के आई है उसको आलिंगन कर रही है, उनके साथ पुष्प का बाल लेकर खेल रही है और दोनों शाम तक आपस में खेले। और फिर राधा कहती है, आप जाइए मत, आपको देखती हूं, आपका रूप मेरे प्रीतम कृष्ण जैसा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप यहीं रहिए, मैं आपको प्रेम के साथ रखूंगी, आप जाओ मत। नहीं, हमें शाम हो रही है, अभी मेरे को जानी है गाय का, मैं गाय का कसम खाती हूँ, मैं गाय के रस का कसम खाती हूँ, मेरे भाई का कसम खाती हूँ, कल सुबह जरूर आऊंगी। राधा तो मूर्छित होने लगी, सब गोपियों ने उसको पंखा दिया और फिर कृष्ण गोपी के उसमें चले गए वापस। दूसरे दिन सुबह सवेले वापस आ गए। अब जब आए तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, फिर गले मिली, बोला बैठिए गोपी, आप भी ये गोप जो गोप देवी बन के कृष्ण आया, ये थोड़ा सा मन ऐसे दुखी उदास होकर बैठ गया। राधा कहती, आपको किसने कुछ कहा है, किसी ने आपको छेड़ा है आते हुए, अगर कृष्ण भक्त नहीं है कृष्ण का तो फिर मैं कोई भी होगा उसको दंड दे दूंगी, आपको आने में बहुत देरी है, दूरी है क्या, आपको आने के लिए हाथी घोड़ा चाहिए, उसकी व्यवस्था कर दो, बहुत दूर है, थक गई हो, कुछ बीमारी है, रोग है, ऐसे जल्दी जल्दी पूछती रही है राधिका। तो गोप देवी के रूप में कृष्ण कहता है, सखी मैं यहां से आ रही थी बरसाना में, यहां एक सांकली गली है, बहुत नेरो लाइन है, वहां कृष्ण मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मैं दही का मटका लेके जा रही थी, मुझे बोला तुम मेरे को टैक्स दो। मैंने बोला टैक्स क्यों दो, उसने मेरे मटका मेरे से छीना, मटका छीन के मटका फोड़ा, थोड़ा दही पिया, बाकी फेंक दिया, फिर मेरी चुनरी को खींचा और फिर भाग के चला गया नंदगांव। इसलिए मैं अनमना हूं, मुझे चिंता हो रही है। और फिर कहती है, राधिका तुम उससे क्यों प्रेम करती हो, काला कलूटा है, गोप है, धन तो उसके पास है नहीं और कोई वीर भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, सुशील भी नहीं है, तुम उससे प्रेम क्यों करती हो, छोड़ो उसको, भूल जाओ। ये कृष्ण परीक्षा ले रहे हैं राधा की गोप देवी के रूप में। अब राधिका ने सरस्वती का स्मरण करके बोलना शुरू किया कि तुम कृष्ण को ऐसे क्यों बोलती हो, तुम कृष्ण को पहचानती नहीं हो, तुम कहती हो कि कृष्ण गोप है, अरे रोज गायों के खुरों से उड़ी हुई धूली में स्नान करता है, अरे गोप सबसे ज्यादा पूजने होते हैं, तो इसको आप गोप होना तो मेरे लिए बहुत बड़ा पूजने है, और आप कहती हैं काला कलूट है, शंकर जी कैलाश को छोड़ के बड़ी जटाएं करके और गले में मुंड डाल माला डाल के उनके पीछे उनके दर्शन के लिए घूमता है वृंदावन में आके ब्रज के अंदर, और ब्रह्मा जी उनका दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते, तुम सब कहती हो वो काला कलूटा है, वो इतना सुंदर है कि सारे देवता उसके दर्शन के लिए यहां वहां भागते रहते हैं। तुम कहती हो कि वो वीर नहीं है, अरे बुदना को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, कालिया को मारा, फिर तुम कहती हो बलवान नहीं है, और धनी की कहती हो, ये कुबेर आदि देवता तो उसके चरणों की रज के लिए पागल पागल की तरह घूमते रहते हैं, ये सारे ब्रह्मांडों का एक अकेला मालक है वो, ये सब ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी के अंदर, जैसे बच्चे की मुट्ठी में मिट्टी होती है, ये ब्रह्मांड उसके मुट्ठी में, उसको आप कहती हो कि वो धनी नहीं है। और सुशील, वो इतना सुशील है कि अपने भक्तों के लिए लक्ष्मी को भी भूल जाता है, अपने प्रिय भाई को भी भूल जाता है, और वो अपने भक्तों के लिए तो उनके पीछे भक्त वत्सल इतना है कि उनकी रक्षा के लिए घूमता रहता है, इससे ज्यादा और कितना सुशील होना चाहिए। अब तो गोप कन्या कहती, अरे आपके तो मुख से वेद बोल रहा है, अगर इतना ही कृष्ण के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी कृष्ण आए, आप उसको बुलाइए। राधिका ने बोला, अगर आ गया तो फिर आपको क्या दंड दूं? और फिर कहते, ठीक है आपकी बात छोड़ो, अगर नहीं आया कृष्ण मेरे बुलाने के ऊपर तो ये मेरा महल, ये सब धन पा आप ले जाना। अब राधिका बैठ गई कृष्ण का चिंतन करने के लिए, आंखें बंद कर ली, कृष्ण कृष्ण, पसीना होने लगा राधिका को सारे शरीर में, आंखों से आंसू बहने लगे। वही सामने कृष्ण बैठा हुआ गोप रूप के रूप में देवी के, देखता है ये तो मुझे याद करके इतनी सारी परिश्रम हो रहा है। एकदम कृष्ण वहां प्रकट हो गए। तब तो ललिता ने कहा, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। अभी राधिका ने आंखें खोली, वो कृष्ण ने कहा, राधिका मैं, आपने मुझे इतना प्रेम से याद किया, मैं आ गया, और जब मैं आ रहा था एक यक्षी काली सी यहां से जा रही थी, वो तुम्हारे को भड़काने के लिए आई थी, उसकी बातों को मत सुना करो, अपने लिए कह रहे हैं कि वो जहां थी इसलिए यहां से जा रही थी ना, मैं आते हुए देखा, उसकी बातें मत सुना करो। तो अब ये परीक्षा कृष्ण राधिका के लिए, उसके बाद राधा और कृष्ण की प्रेम की बहुत सी अद्भुत अद्भुत लीलाएं ब्रज में हुई है, जिसका भागवत के अंदर बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन भागवत के अंदर राधिका का नाम नहीं है, ऐसे लोगों का कहना है। और वैसे राधा का नाम सीधा भागवत में है भी नहीं, और इसलिए नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी राधा का नाम किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि राधिका का नाम लेने से सुखदेव गोस्वामी समाधि में चले जाते थे और 6-6 महीने तक वो आनंद में रहते थे। अब परीक्षित महाराज को तो 7-5 दिन भी बाकी 2 दिन बचे थे, तो इसलिए वो राधा के नाम को गुप्त रखना चाहते थे। तो इसलिए फिर भी एक जगह पे तीसवें अध्याय के 20वें श्लोक में 10वें स्कंद में आराधिता के नाम से राधा का नाम आया है। एक गोपी आराधिता, वो गोपियां कहती है एक को लेके गया है जो उसको पूर्ण रूप से संतोष करती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पास देखते हैं, कैसे पता लगा कि उस गोपी के चरण देखे और उसके चरण के अंदर निशान है, राधिका के लेफ्ट फुट में 11 है और राइट में 8 है और 9 स्पेशल मार्क्स है, अंगूठे के नीचे क्या है ऐसे पूरी मार्कों का क्या क्या है, उसके पांव को देख के गोपियों ने पहुंचाना ये तो राधिका यहां से राधिका गई है, इसके ये चरणों के निशान है। तो राधिका के चरणों के अंदर 19 निशान है, स्पेशल पहचान है उसकी। तो उसके बाद राधिका का ये एक वर्णन एक जगह सुखदेव गोस्वामी के मुख से, गोपियों के मुख से आराधिता निकला हुआ है। और लेकिन हमारे आचार्य तो हर श्लोक के अंदर राधा और कृष्ण को ही भागवत में देखते हैं, तो राधा हमारे लिए, इसलिए ये एक बात आपको, यहाँ लोग कभी कभी यहाँ गाते हैं राधे राधे श्याम मिलाते, ये है हमको वैष्णव को नहीं गाना चाहिए। हम राधा रानी को सेवा, हम कैसे सेवा लेंगे उनसे, हम तो उनकी सेवा करने के लिए हैं, उनको ये सेवा देंगे हमको कृष्ण से मिला दे के हमारे नौकर है, ये तो सहजिया लोग गाते हैं, हमको नहीं गाना चाहिए। और रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी ने ऐसे कहा था, और सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी यही बात कही थी। रूप गोस्वामी के पास जब कदम टेर कदम के पास गए थे सनातन गोस्वामी, तो रूपा गोस्वामी के मन में आया कि मेरा भाई है, मेरा गुरु तुल्य है, गुरु ही है, अब बहुत समय से बाद मेरे पास मिलने आए हैं, ये तो राजा के पास मंत्री थे, अब तो यहाँ ब्रज में भिक्षा ले रहे हैं, मेरे कहीं दूध होता चावल होता तो खीर बना के इनको खिलाता। ऐसे मन में संकल्प किया रूप गोस्वामी ने, एक लड़की, वही 5-7 साल की लड़की, दूध भी ले आई, चीनी भी लाई, चावल भी लाई और कहा कि बाबा बाबा हमारे घर में गायक ने दूध दिया, मैया ने यह भेजा और ये आपके लिए खीर बनाने के लिए चावल है, ये चीनी है, ये सब ले लो। और फिर खीर बनाई, भगवान को भोग लगाया, जैसे ही सनातन गोस्वामी ने उस खीर को पान किया, कहा रूपा ये खीर कहां से आई, तो दिव्य आनंद है इसमें, ऐसा तो कभी स्वाद मैंने कभी नहीं खाया खीर में। बोला कोई बालक ही लाई थी। बोला कौन बालकी थी, तुम्हारे मन में ऐसा संकल्प आया था कि खीर बनाओ? बोला हाँ। बोला जाओ पता करो बालकी कौन है। वहां पूछा, कोई गांव में कोई लड़की नहीं, कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, कहां से आ गई थी? तब सनातन गोस्वामी ने कहा, रूप गोस्वामी तुमने ये विचार किया कि खीर बनाऊं, इसलिए राधिका को तुम्हारे लिए दूध लाना पड़ा, कभी भी उसको सेवा देकर अपराध मत करो, हम उसकी सेवा के लिए यहां आए हैं, हमको ऐसे नहीं मांगना चाहिए और उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, हम उसकी सेवा के लिए आए हैं। सनातन गोस्वामी ने देखा एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के ऊपर तपस्या, ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि कभी कुटिया नहीं बनाई। तो एक बार तो राधा कुंड के ऊपर शेर पानी पीने के लिए बाघ आया, तो भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हैं कि बाघ कहीं रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो ये जब देखा तो कहा सनातन गोस्वामी रघुनाथ कोई कुटिया बना लो, भगवान तुम्हारी चौकीदारी करनी पड़ रही है, फिर भी नहीं बनाई। तो एक बार गर्मी में जून के महीने में रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं, ऊपर इतना सूरज तप रहा है 45 डिग्री, तो उस वक्त राधा रानी अपने आंचल को ऊपर सूर्य से ऐसे ढक रही है ताकि रघुनाथ गोस्वामी के ऊपर सूरज का रोशनी न पड़े। ये सनातन गोस्वामी ने देखा, तब आगे कहा रघुनाथ रघुनाथ तुम कुटिया बना के रहो, देखो तुमको राधा रानी को कष्ट देते हो कि तुम्हारे को आके ऊपर से छाया कर रही है अपने आंचल से। तो ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का ये मानना है कि हमें राधा रानी की हम सेवा करने के लिए उसको कृष्ण की सेवा में हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं, न कि उसको हम सेवा का आदेश दे सकते हैं। इसलिए ये सहजिया मंत्र है, हमको नहीं जपना चाहिए। तो यहाँ अपन राधा रानी की महिमा को विराम देते हैं और हरे कृष्णा मंत्र ही जपना राधा रानी को और कृष्ण दोनों को प्रसन्न करने के लिए। इस मंत्र के अंदर दोनों युगल है। इस मंत्र को पहले निम्बारक संकल्प संप्रदाय में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसे ही गाते हैं और अभी भी ऐसे गाते हैं। ये पहले संप्रदाय निम्बारक थी, लेकिन चेतना महाप्रभु ने आकर राधा रानी को गुप्त रूप में कर दिया हरे कृष्णा मंत्र में, क्योंकि कलयुग के लोग राधा तत्व को नहीं समझ पाएंगे, जिसका जैसा भाव होगा वैसे उसमें से लाभ ले लेगा। तो इसलिए थोड़ा गुप्त है हरे कृष्णा मंत्र में, हरे राधा को संबोधन है, जैसे हरि हरे बनता है संबोधन में, जैसे राधा राधे हो जाता है, राधा को राधे बोलते हैं जब बोलना होता है, ऐसे हरि को हरे बोलते हैं जब बुलाना होता है। तो हरि से हरे हो गया और ये हरे राधा को संबोधन है। जो हरि को हर ले वो हरे, हरि सबके सबका हरण करता है, लेकिन हरि को भी जो हर ले, कृष्ण को कृष्ण मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, उसको राधा रानी बोलते हैं, वो ब्रज की रानी है, कृष्ण को राजा नहीं बोलते। तो ब्रज की रानी राधा है, और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन में आज भी सब लोग राधे राधे बोलते कि राधा की कृपा कैसे हो जाए, राधे राधे, सब लोग जय राधे जय राधे। भिक्षा लेने के लिए साधु जाएगा तो दरवाजे के ऊपर बोलेगा राधे राधे, तो अंदर से मैया आके कुछ भिक्षा दे देगी। तो हमारे को भी निश्चित रूप से हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और राधा तत्व को ठीक से समझना चाहिए कि ये स्त्री पुरुष का कोई आपस में संबंध की बात नहीं है, ये भगवान की दिव्य शक्ति और भगवान का उल्लास और आनंद है, और ये दोनों जो अलग हुए थे फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों मिलके एक हुए। राधिका कितनी महान है इसको केवल चेतना महाप्रभु को जानने से इसका पता लग सकता है, और ये सब समाचार हमको राधा रानी का चेतना महाप्रभु के आने के बाद प्राप्त हुआ। और चेतना महाप्रभु ने इसलिए अवतार लिया क्योंकि राधा कितना मुझसे प्रेम करती है, उसको क्या सुख मिलता है। कृष्ण कहते हैं क्या राधिका को सुख मिलता है मुझसे मिलकर, कितना मुझसे राधिका प्रेम करती है और मैं कितना सुंदर हूं। ये तीन चीजों को जानने के लिए कृष्ण राधा के भाव को अंगीकार करके चेतना महाप्रभु बने, दोनों मिलके एक हो गए। तब राधा भाव में आए, तभी हम उन्होंने राधा रानी के महिमा का हमको परिचय दिया। तो श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री राधा गोविंद देव की, राधा मदन मोहन की, राधा गोपीनाथ की, सर गोस्वामी पाद की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री राधे श्याम जय जय।